लघु वासुदेव मननम, जिन लोगों के पास पुस्तक है वो मिला सकते हैं। पृष्ठ संख्या 41, पेज नंबर 41। विषय ये चल रहा है कि आत्मा में जैसे दुख आगंतुक है, वैसे ही कर्तापन भी आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। और कार्यितापन, करवाना जो आरोप लगा आत्मा में, ये भी वास्तविक नहीं है बल्कि आरोपी भी है। जिसमें यहां तक हो गया, अब नीचे देखिए, ननु अचेतनस्य रागद्वेषादेहे कथम कार्यितृत्वम्। बोलते हैं ये जो कराने का काम होता है, हमारी जो इंद्रियां करने के लिए प्रवृत्त होती है, आपने नाम लगाया कि राग और द्वेष ही हम सबसे कुछ करवा लेते हैं, तो नहीं घटो घटांतरम प्रेरयति इति। घड़ा जैसे जड़ है तो घड़ा घड़े को प्रेरणा नहीं देता, क्योंकि जड़ होने के कारण। सत्यम कहते बात सही है, तुमने जो कहा वो ठीक है, तथापि फिर भी कुत्रचिद योग्यतावशात जड़ प्रेरयति, और योग्यता अभावात कुत्रचिद न प्रेरयति। जड़ जड़ को प्रेरित नहीं करते, ये तो बात ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा किसी किसी जड़ वस्तु में भी इतनी योग्यता होती है कि वो प्रेरणा दे देते हैं। योग्यता अभावात कुत्रचिद न प्रेरयति, और जहां योग्यता का अभाव है वहां प्रेरणा नहीं भी देते हैं। वह कैसा है, उदाहरण दिया, यथा जड़ो अपि अग्निर गंधकादि संयुक्ते संयुक्त इंगाल चूर्ण विशेषी सहित सज्जडमेव बृहन्नलिकांतः स्थितं स्थूलपाषाणं प्रेरयन् तेन चतुरंग सेनां हन्ति। जैसे जड़ो अपि अग्नि, अग्नि अपने आप में जड़ है, लेकिन उस अग्नि के द्वारा प्रेरित होकर के बंदूक के नाली में जो गोली भरी जाती है, और उस गोली को जैसे प्रेरणा देती चलो बाहर, अर्थात अग्नि से प्रेरित होकर के ही बंदूक की नाल से गोली निकलती है। संस्कृत में इसका नाम रखा बृहन नलिकांत, बृहन नलिका, और उसमें अंतस्थित उसके अंदर जो विराजमान है स्थूल पाषाणम, पत्थर का जो टुकड़ा अर्थात गोली। प्रेरयन, प्रेरणा देता हुआ वह अग्निदेव उस गोली के माध्यम से चतुरंग सेनाम हंती, युद्ध के मैदान में डटे हुए जो लोग हैं उनका हनन हो जाता है, मारे जाते हैं। और तो और किंच और भी क्या है, वो प्रेत शरीरम जड़म अपि, हम लोगों का शरीर कैसा है, जड़ तो है ही, और साथ में क्या कह दिया, प्रेत शरीरम प्रकर्षेण इतः प्रेतः, जो यहां से चल पड़ा उसका ही नाम है प्रेत, प्रेतियोनि। प्रेत शरीरम जड़म अपि स्वज्ञाति, अपने जो बंधु बांधव रिश्तेदार में कोई गए और उसके क्रिया करने के लिए, अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए क्रियमाणाम अपर क्रियाम प्रति स्वयं कार्य इत्री भवति। अब हम लोग जो प्रेरणा देते हैं कि भाई ले चलो जलाने के लिए हो गया समय, जो बोल रहा है उसका शरीर भी क्या है, जड़ ही है। जड़ के द्वारा जड़ को जलाने की प्रेरणा दी जा रही है कि नहीं जा, कैसे आप कहते हो कि जड़ वस्तुओं में प्रेरितापना नहीं होता, जैसे कि यहां हम लोग मरे हुए शरीर को जलाने के लिए जो बोलने वाले अपने को जीवित मान रहे हैं, वह शरीर भी अपने आप में देखा जाए तो जड़ ही तो है। तो जड़ के द्वारा जड़ वस्तु के लिए प्रेरितापन देखा गया है, बंदूक के नाली की गोली चली, सेना मारी गई, अग्नि से प्रेरित होकर के ही काम हुआ, यहां पर भी प्रेरितापन दिख गया। तो ये जो तुमने नियम बनाया कि नई घटा घटो प्रेरयती, घड़े घड़े को प्रेरणा नहीं दे सकते, तो ऐसा कहीं योग्यतावशात होता है? सर्वत्र ये नियम लागू नहीं होगा। कई बार तो हम लोग बोलते ना, वो देखो गाड़ी आ रही है। अब गाड़ी क्या आ रही है? गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ आदमी है, वो चला के आ रहा है। ओ रिक्शा इधर आना, रिक्शा वाला इधर आओ नहीं बोलते, ओ रिक्शा इधर आना। रिक्शा क्या आएगा? रिक्शा वाला आएगा। तो सन्निधि मात्र से कैसे इसमें कर्तापन कारयितापन आदि होता है, उसका सुस्पष्टीकरण आगे होगा। एवं एव इस प्रकार से अचेतनम अपि राग द्वेषादि कारयित्री भवति। इसलिए राग और द्वेष जो अचेतन है, जड़ है, इसमें भी कारयितापन हो सकता है। अर्थात हम लोगों के अंदर जो करना कर्तापन कारयितापन है, राग द्वेषादि मूलक है। राग द्वेष ही इसके मूल है, जड़ है। कभी भी हम किसी से कुछ करने के लिए बोलते ना, ये करो, या स्वयं जो करते हैं या दूसरे को बोलते हैं करो, दूसरे को बोलना करो, ये हो गया प्रयोजक, प्रेरणा, कारयिता। और स्वयं जो करते हैं उसका नाम हो गया कर्ता। कर्ता और कारयिता में अंतर है थोड़ा। तरही तब तो जो आया है श्रुति में, आत्मा ऋषिकेश सर्वांतरयामी इति वदन्त्याः श्रुतेः, किम तात्पर्य इति चेत। श्रुतियों में जो आया है कि आत्मा ही सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिसको ऋषिकेश भी बोलते हैं, इस श्रुति का क्या तात्पर्य है? क्या ये आत्मा नहीं करते, आत्मा नहीं करवाते? तो कहते हैं, आदित्यवत सन्निधान मात्रेण सर्व कार्य अनुकूलो भवति इति तात्पर्यम्। आदित्यवत भगवान सूर्य की तरह सन्निधान मात्रेण, सूर्य कुछ भी नहीं करते। गीता में आता है ना, दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। सूर्य के द्वारा कीचड़ में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसको उससे भी सूर्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और पवित्र पदार्थ को भी प्रकाशित करते हैं, उससे भी सूर्य में कुछ विशेषता नहीं आती। घटना और बढ़ना ये वस्तुओं के साथ सूर्य में कोई निर्भर नहीं करता, सूर्य अपने आप में उन सबसे निर्लिप्त है, लिपायमान नहीं होते। उसी प्रकार से सर्व कार्य अनुकूलो भवति इति तात्पर्यम्। जैसे सूर्य के सन्निधि मात्र से सब कार्य होते हैं, लेकिन सूर्य को उन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, उसी प्रकार से इस आत्मा के माध्यम से भी हम लोगों का जो भी हो रहा है कर्तापन कारयितापन, आत्मा के सन्निधि मात्र से ही है, आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मनो न अदृष्टम। अब ये जो है कर्मों का संचालन, आत्मा को इन कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को बताने के लिए अगली पंक्ति आ रही है। ननु आत्मा सन्निधान मात्रेण सर्व प्राणी कर्म हेतु तरही अत आत्मनोपि तत्पुण्य पाप तत्फल संबंधोपि स्यादिति चेद। सन्निधि मात्र से भी भले ही जो प्राणी हम लोग कर्म करते हैं, शुभ अथवा अशुभ, पुण्य और पाप, इससे आत्मा का संबंध माना जाए तो न, निषेध किया। अभी अभी उदाहरण दिया था, यथा आदित्यस्य सन्निधान मात्रेण सकल जन पुण्य पाप अनुकूल पापानुकूलस्य अपि तत्पुण्यम च तत्पापम च तत्फलम च यथा न स्यात् तथा आत्मनो अपि मन्तव्यम्। ये पूरे पंक्ति ऐसे पढ़ना चाहिए। ये तो प्रवचन भी है, समझो स्वाध्याय भी है। लघु वासुदेव मरणम की पंक्ति बहुत सरल है, आसान है, इतनी कठिन संस्कृत नहीं है। फिर भी व्याकरण के ज्ञान न होने से थोड़े संधि आदि का विच्छेद करना मुश्किल होता है, और इसको पढ़ के नीचे की हिंदी भी पढ़ो तो कई जगह पता नहीं चलता है कौन से पंक्ति का अर्थ किया, तो बार बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे मालूम पड़ने लग जाएगा। तो सकल जन जितने भी लोग संपूर्ण प्राणी, पुण्य और पाप अनुकूलस्य अपि तत्पुण्यम च तत्पापम च तत्फलम च, जो करेगा वो भरेगा। हम लोग भी क्या बोलते हैं, जो करेगा वो भरेगा। तो आत्मा का भी यही कहना, भाई शरीर से करते हो तो शरीर ही भोगेगा, काम करे कालू और खाए भालू थोड़े होता है। यहां तो जो करेगा वो भरेगा। आत्मा तो भगवान सूर्य की तरह ही सन्निधि मात्र से ही, वो भी कहां कहने के लिए समझाने के लिए, आत्मगत कुछ लेना देना है ही नहीं। ईश्वर ने कैसे संकल्प किया, अपने अंदर से इतनी सारी चीजों को प्रकट कर दिया। अब लोगों को लगता है कि हम लोगों को क्यों बनाया, कभी लगता है बना दिया तो बड़ा अच्छा हुआ, तभी तो प्रेमपुरी देख रहे हैं, बम्बई देख रहे हैं, लेकिन देख भी लिया तो कौन सा तीर मार दिया, बात तो यहां है ना। इससे पहले भी बहुत सारे शहर देखे, दुनिया देखे, क्या हुआ, चले जाएंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं होता आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का फल क्या है, ये सब आप आगे सुनेंगे। इसीलिए अयश्चेष्टा अपि सन्निधान मात्रेण स्वानुकूलाम कांतशीलाम यथा न स्पृशति। कांतशीला मतलब चुंबक, जैसे चुंबक के सन्निधि मात्र से लोहे में हलचल होती है, लोहा हिलने लगता है, फिर भी चुंबक उस लोहे का स्पर्श नहीं करता, उससे वो दूर ही रहता है। तो कोई ये कहे कि आत्मा सन्निधि मात्र में भी रहे तो उन कर्मों से स्पर्श तो हो ही सकता है, उसके लिए दृष्टांत है कि चुंबक के बिना लोहे में हलचल हो नहीं सकती, और लोहे के हलचल से चुंबक को कोई लेना देना भी नहीं है। इसलिए दृष्टांत दिया अयश्चेष्टा अपि, अय मतलब लोहा, लोहे में होने वाली चेष्टा हलचल भी सन्निधान मात्रेण, उस चुंबक के सन्निधान संपर्क मात्र से, नजदीक में होने से ही, स्व अनुकूलाम उसी के अनुकूल जो चुंबक है कांतशीलाम यथा न स्पृशति तथा प्राणी कर्म अपि आत्मानम इति च ज्ञेयम्। उसी प्रकार से प्राणियों के कर्म से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, पक्का हो गया। इसलिए तस्मात मतलब इसीलिए न आत्मनो निरंजनत्व निर्विकारत्व भंग, आत्मा का जो अपना निरंजनपना है और विकार रहितपना जो है वह कभी भी नष्ट नहीं होता, अर्थात उसका निरंजनपना और निर्विकारपना सन्निधि प्रदान करके भी वह अपने स्वरूप में ही रहता है। इसलिए मुंडकोपनिषद में जो मंत्र आया वो कौन, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। ये जो निरंजनपना है ना आत्मा का, इसलिए अखाड़ा बन गया। देखो हम लोगों का अखाड़े का नाम है निरंजनी अखाड़ा, निरंजन, अंजन मतलब काजल, और काजल जो है जिस स्थान में लगे तो फिर बोलते ये अच्छा है, आंख में लगाए तो काजल लगाना अच्छा है और कपड़े में लग जाए तो खराब है, शरीर में और जगह लग जाए तो खराब है, और बच्चे को नजर ना लगे तो यहां लगा दिया, आंख में भी लोग लगाते हैं। तो ज्ञानांजन सलाकया चक्षु उन्मीलितम ये न, ऐसा आता है गुरु गीता में, अंजन काजल। ये पुण्य और पाप जो हैं एक तरह से अपने आप में अंजन ही हैं, इसे दोनों का निषेध किया। लोग सोचते हैं पाप से बचो पुण्य करो, बोलते पुण्य का भी फल भोगने के लिए आना पड़ेगा ना, क्यों करें पुण्य, बोले एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आपके अंदर ऐसा स्वभाव बन जाएगा कि आपके सन्निधि मात्र से ही सब अच्छे कार्य होंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको ही तो बोलते हैं ना प्रभाव। आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी का प्रभाव क्या है? सन्निधि मात्र से क्रियाकलाप की तो बात छोड़िए, जो आनंद का अनुभव होता है ना, तो ऐसे महापुरुषों के सन्निधि में बैठ करके कभी भी अपने मन में उद्वेग ना हो, किसी के लिए कटु बोलना, कटु सोचना, जिसका ऐसा स्वभाव होता भी है और जब ऐसे महापुरुषों के पास चले जाते हैं तो हतप्रभ हो जाता है, उसकी वाणी सब अवरुद्ध हो जाती है, संकोच करता है कि इनके सामने। कई बार लोग बोलते रहे वो है ना, इसलिए ना तो मैं आज इसको बताता, उनकी वजह से मैं नहीं कुछ बोल पाया। ऐसा एक लोक में भी देखा गया है। तो जो आनंद का अनुभव शास्त्र पढ़ के नहीं हुआ, जो आनंद का अनुभव सुन करके नहीं हुआ, वही आनंद का अनुभव किसी महापुरुष की स्थिति को देख करके हो जाता है। इसलिए जो ऐसे अपनी स्थिति में रहते हैं ना, उनके पास रहना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। तस्माद ही आत्मज्ञम अर्चयेद भूतिकामः। जो लोग विभूति ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं उनको जरूर आत्मज्ञों की अर्चना करनी चाहिए, उनके समीप में जाना चाहिए, तब पता चलेगा कि कैसा जीवन होता है। सुनी सुनाई बात और होती है, निगेटिव बात तो दिमाग में अपने आप भी आ जाती है कई बार, और दूसरे लोग कोई उटपटांग लोग मिल जाए तो आपका और ब्रेन वॉश कर देते हैं, ऐसा है तो ऐसा है। इसलिए स्वयं अनुभव करना बहुत जरूरी है, और स्वानुभव सर्वानुभव नहीं होता। मान लीजिए आपके बारे में मेरे मन में कटु अनुभव है, तो ये कोई नियम नहीं है कि इस कटु अनुभव का मैं सर्वत्र प्रचार करूं, सर्वत्र बताऊं कि इनका ऐसा स्वभाव ही ऐसे है, ये गलत बात है। हो सकता है मेरा उनके बारे में कटु अनुभव है लेकिन आपका मधुर अनुभव है, तो आपके दिमाग में जो उनके प्रति सकारात्मक भाव है और मैं उसको नकारात्मक भाव में डालने की कोशिश करूं, ये भी एक अपने आप में पाप है, दोष है। और ये प्रायः हम लोग बोल जाते हैं ऐसा, अरे वो तो ऐसा ही है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो यदा पश्य पश्यते रूक्म वर्णम, वह जो पश्य दृष्टा है, रुक्म मतलब सुवर्ण के समान तेजोमय परमात्मा का जो दर्शन जिसने किया, सब लोग जग रहे हैं ना। यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, जो वह ब्रह्म सबके योनि मतलब कारण है, हेतु है, कर्ता है, ऐसे पुरुष रूप से उस परमात्मा को जिसने जाना। तदा यदा तदा जब ऐसा होगा अनुभव, तदा विद्वान वह जो आत्मविद्ता है, पुण्य पापे विधूय, पुण्य और पाप दोनों को धो करके, विधुनन मतलब धोना निकाल देना, निरंजन, अब वह न पुण्य रूपी अंजन से युक्त है और न पाप रूपी अंजन से युक्त है। ना आंख में लगाना है, और शरीर में लगाना तो खराब था ही, अब हमें काजल का ही प्रयोग नहीं करना, इसलिए निरंजन हो गए। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुम ब्रह्मा नमाम्यहम। तो ऐसे जो निरंजनता का अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक पुण्य से तो हम बच नहीं पाते। और तैतरीय परिषद में आता है किम अहम पापम अकर्वम और किम अहम पुण्यम नाकर्वम, मैंने पाप क्यों किया और मैंने पुण्य क्यों नहीं किया, ये दोनों ही पश्चाताप का ही स्वरूप है। पाप करने के बाद मैंने क्यों पाप किया, ये भी पश्चाताप है, और मैंने पुण्य क्यों नहीं किया, ये भी पश्चाताप है। और ये तब तक होता रहता है जब तक उस आनंद रूप ब्रह्म का ज्ञान न हो जाए। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन इति, ऐसा वहां है तैतरीय उपनिषद में। तो कहने का मतलब है तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यम। जब पुण्य और पाप से परे हो जाते हैं उसी व्यक्ति के हृदय में समता का भाव आता है। और अभी पहले तो पाप से बचने के लिए पुण्य करना चाहिए, ये भी एक नियम तो है, लेकिन जब आपका जीवन ही पुण्यमय हो गया तो अलग से आपको पुण्य करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रातः काल से सायंकाल तक और आजीवन हमेशा आपके द्वारा पुण्य कार्य ही होते हैं, कभी गलत कार्य होते ही नहीं, इसलिए उनको अलग से ये सब करना नहीं पड़ता। क्यों? परमम साम्यम उपेति, उस परम समता को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए ये आत्मा का जो निरंजन पना है और निर्विकार पना है, सन्निधि मात्र से चुंबक की तरह लोहे को सन्निधान मात्र से जैसे उसमें चेष्टा देखी जाती है, वैसे हम लोगों के शरीर में जो चेष्टा हो रही है आत्मा के सन्निधि मात्र से हो रहा है सब, आत्मा का इसे कोई लेना देना नहीं है। एवं आत्मस्वरूपे प्रसिद्धे, आत्मा का जो ये स्वरूप अत्यंत प्रसिद्ध है, कैसा है ये आत्मा? गुरुणा उपदिश्य माने अपि, गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त करने पर भी प्रतिबंधक त्रयेण न निश्चयो भवति, बार बार सुनते हैं फिर भी इस उपदेश का असर हम लोगों में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तीन प्रकार के जो प्रतिबंधक हैं यही हमारे ज्ञान न होने में कारण है। सुन तो लिया, श्रवण तो करते हैं कई बार, लेकिन श्रवण भी कैसा है? श्रवणम नाम, श्रवण कैसा होना चाहिए? तो श्रवणम नाम षड्विध लिंगैहि अशेष वेदांतानाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्यावसानम। तात्पर्य अवधारणम कह भी सकते, तात्पर्य का निश्चय हो जाए, और वह तात्पर्य क्या है? आगे षड्विध लिंगैहि, छह हेतु है श्रवण करने के, जो तरीका है उसमें इन छह चीजों का उपयोग करना है। आप लोगों ने लिखा भी होगा पहले, याद होगा तो और भी अच्छी बात है। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासा अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। अभी केवल मैं संक्षेप में सुना रहा हूं क्योंकि इसका विस्तारीकरण जो आगे होगा। यहां पर इतना ध्यान रखना है कि श्रवणम नाम, श्रवण उसका नाम है कि ये छह प्रकार के लिंगों से अशेष वेदांतानाम, संपूर्ण वेदांतों को सुनने के बाद क्या निश्चय हुआ? अद्वितीय ब्रह्मणि, उस अद्वैत रूपी जो परमात्मा है, ब्रह्म है, संपूर्ण वेदांत शास्त्रों को सुनने के बाद ये निश्चय हुआ कि इसका अभिप्राय है अद्वितीय ब्रह्म को बताने का। ठीक से यदि सुने होंगे तो श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो, और सबसे पहले जो हम लोगों के मन में प्रतिबंधक है आत्मज्ञान न होने में, वह है संशय भावना। तीन जो प्रतिबंधक है नाम गिना दिया, संशय भावना, असंभावना और विपरीत भावना। और इन तीनों को हटाने के लिए भी है श्रुति, युक्ति और अनुभूति, इसी का नाम है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रुति, युक्ति, अनुभूति, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण के द्वारा संशय भावना निवृत्त होती है, मनन युक्ति के द्वारा असंभावना की निवृत्ति होती है, और निधिध्यासन के द्वारा विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। और इन्हीं तीनों भावनाओं के कारण गुरुणा उपदिश्यमाने पि, गुरुदेव के द्वारा उपदेश प्राप्त होने पर भी अभी हमारे मन में ये जो दोष है इसकी वजह से आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा है। संशय का स्वरूप क्या है? तो यहां जो बताया ये शास्त्रीय संशय है, लौकिक संशय तो अलग है। संशयात्मा विनश्यति जैसे आता है गीता में, यहां बता दिया प्रतिबंधक त्रयम च संशय भावना असंभावना विपरीत भावना च इति। संशय भावना क्या है? ऋगादि शाखासु उपदिश्यमानम उपनयन आदि कर्म यथा अनेक विधम। ऋग्वेद आदि के शाखाओं में उपनयन आदि जितने भी ये कर्म हैं, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, तो कर्मकांड में अनेक विषयों का उपदेश दिया गया, बताया गया वहां। यथा अनेक विधम कर्म, अनेक प्रकार के कर्म बताए गए ऋग्वेद आदि शाखाओं में। तथा ऋगादि शाखासु, यहां पर संधि होकर के बन गया तथर गादि, वहां यहां पर भी वही है, तथा ऋगादि संधि होकर के बन गया तथर गादि, जिसको काट पीट न करे जैसा वैसे रहने दीजिए, या ये समझिए कि तथा ऋगादि, यथा ऋगादि तथा ऋगादि। जैसे ऋग्वेद में कर्मों का अनेक उपदेश है, वैसे ही ऋग्वेद में ही आत्मा का जहां प्रतिपादन किया गया तो मन में संशय होता है कि जैसे अनेक प्रकार के कर्मों का उपदेश दिया गया वैसे आत्मा भी अनेक प्रकार के हैं क्या। ये जो भावना है यही अपने आप में संशय भावना है, ये शास्त्रीय संशय है। ऋग्वेद जो पढ़ेगा, कर्मों के बारे में सुनेगा, तब तो उसको लगता होगा कि शायद जैसे कर्म अनेक प्रकार के होते हैं उसी प्रकार से आत्मा भी अनेक प्रकार के होते होंगे, ये संशय भावना। तथा ऋग आदि शाखासु उपदिश्यमानम आत्मतत्वम अपि अनेक प्रकारम वा न वा इति संशय, ऐसा है या नहीं। सा सकल वेदांत तात्पर्य अवधारण रूप श्रवणेन नश्यति। संपूर्ण वेदांतों का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है, ये जब निश्चय हो जाता है कि वेदांतों में एकमात्र अद्वैत ब्रह्म का ही उपदेश दिया गया है, बाकी सब के सब दृष्टांत है, उदाहरण है। यहां तक कर्मों का जो विनियोग किया गया, कर्मों का जो उपदेश दिया गया है, वह भी क्रमशः उपयोग किया जाए, उन कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करके अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक भी आत्मज्ञान में उसका प्रयोग हो सकता है। लेकिन वहां तक हम जा नहीं पाते ना, कर्म करते हैं, फल पाने की इच्छा हो जाती है और इसलिए चित्त में दोष आ जाता है, इसलिए आत्मज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं। इतना आसान है क्या? बाहर से तो हम लोग बोलते हैं बस ये अब करें क्या, खाली बैठे तो रहा भी नहीं जाता ना, सोचते कुछ ना कुछ करें। करने के बाद जो उससे कुछ फायदा होता है और उस फायदा से आप क्या चाहते हो, सबको लाभ मिले या केवल हमको मिले? हाँ, सब में कौन आते हैं? और क्या, अपने ही लोग आते हैं, दूसरे लोग लेंगे लाभ तो आप सहन करोगे? अपना जब कुछ करता है तो आप कहीं नहीं बोलते, चुप रहते हो, और दूसरा यदि आपसे लाभ उठावे तो ढिंढोरा पीटते हैं, हमने जो किया इतने लोगों को लाभ मिला, बताने की क्या जरूरत है? जो लोग हैं वो आपसे अलग है क्या? घर वाले लोग लोग नहीं है और बाहर वाले लोग लोग हो गए, और इसीलिए वे कर्म कहीं न कहीं हमारे मन में अशुद्ध भावना पैदा कर देते हैं, यही है चित्त की अशुद्धि। मौन रहो ना, फिर जो हो रहा है ठीक है, बहुत कठिन है। क्या भगवान ने लीला की है, खून का रिश्ता है, ये रिश्ता है, लोग गुस्सा में बोलते हो, हमारा कोई रिश्तेदार लगता है क्या जो मैं उसके लिए करूं? अब रिश्तेदार के लिए किया तो बोलते हमारे कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो बहुत दूर का रिश्ता है, ऐसा भी बोल देते। संबंध सम्यक बधनाती इति संबंध, अच्छी प्रकार से जो बांध के रखे उसका नाम क्या है? संबंध। जो आपको बांध के न रखे कोई संबंध नहीं। अच्छा, संबंध बनाने में सुख है कि दुख है? हाँ, अरे यहां तो बोल लो ना, यहां थोड़ी कोई संबंधी, आप डरते क्यों? सुख है। अच्छा, दुख भी फिर इन्हीं से होगा ना? जहां सुख का अनुभव होता है वही क्या होता है, दुख का भी अनुभव वही होता है। रास्ते में चलते हुए लोगों से कोई संबंध नहीं है तो वे हमारे दुख के कारण भी नहीं बनते, और जिनको हम अपना मानते वे अपने ही लोग दुख भी देते हैं। तो जब सुख का भ्रम हमने उसमें किया तो दुख का भ्रम भी वही होता है। और जब ये मान लो कि कोई सुख नहीं देता किसी को, सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, कोई भी सुख का दाता नहीं है न दुख का दाता है, परह ददाती, दूसरा देता है, दूसरे लोग हमको सुख देते हैं दुख देते हैं, कुबुद्धि ऐसा। ये अच्छे विचार वाले लोग नहीं बोलते, ये तो बिना दिमाग से सोचने वाली बात हो गई। दिमाग लगाओ तो पता चलता है कोई न सुख देता है और न ही दुख देता है। अहम करोमि इति वृथाभिमान, मैं करता हूं, ये व्यर्थ का अभिमान है। स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक, इस लोक का मतलब क्या होता है, लोक्यन्ते दृश्यन्ते इति लोका, जो दिखाई दे उसका नाम लोक होता है। इसी में आ लगा दो आलोक विलोक ऐसा बन जाता है। तो लोक्यन्ते दृश्यन्ते इति लोका, जो ये लोक दिखाई दे रहे, लोक से ही हिंदी में लोग बन गया, कितने लोग, तो जो दिखेंगे वही तो गिने जाएंगे। तो लोक का अपभ्रंशी है लोग, और ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे सब अपने अपने कर्म रूपी धागे से बंधे हुए हैं। वो धागा का नियंत्रण किसके हाथ में है? और हम बोलते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का, क्योंकि उस धागे को हमने अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जब पता चला कि अपने हाथ में हम रख नहीं सकते तो अच्छा है कि पहले से ही क्या करो, जिसके हाथ में है इतने रियलाइज हो जाए, समझ में आ जाए कि ये धागा तो और किसी के हाथ में, पतंग कहीं भी उड़े लेकिन नियंत्रण तो उड़ाने वाले के हाथ में, हम लोग तो पतंग की तरह हैं, उड़ते जा रहे। तो क्या निश्चय हुआ, वेदांत श्रवण करने के बाद चाहे कर्मों का प्रतिपादन हुआ है वेदों में अथवा उपासनाओं का प्रतिपादन हुआ है वेदों में, इन सब का एकमात्र तात्पर्य यदि निकाले तो आत्मज्ञान कराना ही इन कर्मों का उपासनाओं का उद्देश्य है। लेकिन कर्म और उपासना के फल पा करके या फल पाने की इच्छा रख करके अंतःकरण यदि और भी मलिन हो जाए तो ऐसे कर्म और उपासना से आत्मज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कर्म और उपासना का अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की निश्चलता, जो चांचल्य दोष है इसकी निवृत्ति के लिए उपयोग किया जाए तो ये भी आत्मज्ञान के सहायक हो जाते हैं। इसे इनको बोलते क्रम साधन, कर्म और उपासना जो है मोक्ष के लिए क्रमिक साधन है, और ज्ञान जो है साक्षात साधन, वही परंपरा। पारंपरिक साधन हो गए कर्म और उपासना, और ज्ञान हो गया साक्षात साधन। तो सकल सा जो संशय भावना है उसकी निवृत्ति होगी, नश्यति सकल वेदांत तात्पर्य अवधारण रूप श्रवणेन नश्यति, एवं सर्वेषां वेदांतानां अद्वैते ब्रह्मणि एव तात्पर्यम् इति। संपूर्ण वेदांतों का अद्वैत ब्रह्म में ही तात्पर्य है, ऐसा जब श्रवण करते हैं तो प्रमाण विषय संशय, जो संशय आत्मा के बारे में था नष्टे अपि इदम अद्वैतम कथम संभाव्यते। वेदांत प्रमाण के द्वारा श्रवण करने के बाद भी ये मन में आ रहा है कि ये सब अद्वैत कैसे हो सकते हैं, सत्यत्वेन प्रतीयमानेषु, श्रवण के द्वारा संशय भावना तो निवृत्त हो गई लेकिन अद्वैत में ही सब संभव है ये अभी निश्चय नहीं हो पा रहा है। संभव न होना ही तो असंभव हो गया ना, और इसलिए इसका नाम पड़ेगा असंभावना, संशय भावना और असंभावना। तो अद्वैतम कथम संभाव्यते, क्योंकि सत्यत्वेन प्रतीयमानेषु, सत्य के रूप में जो हम सबको प्रतीति में आ रहा है वो क्या है, जीव, ईश्वर, जगत, ये सब सच्चा लग रहा है कि झूठा लग रहा है, सच्चा लग रहा है। परस्पर भिन्नेषु, ये सब के सब भिन्न भिन्न है, जीव ईश्वर नहीं है, ईश्वर जगत नहीं है। वेदांत सुनने के बाद मालूम पड़ता है कि जीव ईश्वर आदि सब औपाधिक रूप से भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, देखा जाए तो सब एक ही हैं। ये तत्त्वमसी महावाक्य का जब प्रतिपादन होगा वहां पर इसका सुस्पष्टीकरण किया गया है। तो जीव ईश्वर जगत ये तीनों परस्पर भिन्न हैं, लेकिन सत्सु इति बुद्धि, इन सब में सत्य रूप जो परमात्मा है वह एक ही है, लेकिन उसमें अभी बुद्धि की क्या हो रही, असंभावना, ये भला सब सत्य कैसे हो सकते हैं। जीव ईश्वर जगत इन सब में कौन है, सत्य रूप से परमात्मा ही है। इयम स्वप्न दृष्टांतादि रूप युक्त्या आत्मकम आत्मक युक्त्यात्मक मनने न नश्यति। जब हम युक्ति लक्षण के द्वारा स्वप्न में स्वप्नादि का दृष्टांत देकर के जागृत अवस्था का जो भी ये जगत दिखाई दे रहा है ये असत्य कब होता है, आत्मज्ञान होने पर। और दृष्टांत दे दिया कैसे, जैसे स्वाप्निक जगत, स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ असत्य कब लगते हैं, जगने पर। जिस समय हमें दिखता है स्वप्न में उस समय सच्चा होता है कि झूठा होता है, सच्चा होता है ना, सच्चा होता है उस समय, सच्चा ही होता है, जगने के बाद झूठा होता है। वैसे ये जो जगत दिखाई दे रहा है ये भी कैसा है, दोनों तरफ बोल रहे हैं। एक बात तो निश्चय करो ना, ये जब भोजन परोसते हैं ना लोग तो जो जो आइटम दिखता है बोलता है थोड़ा तो ले ही लेंगे, छोड़ते कुछ नहीं है, और नहीं दिखाओ तो बोलते बस रोटी सब्जी से हो जाएगा, और लाके दिखा दो तो बोलते हैं थोड़ा सा ले लेंगे, बोले तीखा है कोई बात नहीं थोड़ा तो खा सकते हैं। कुछ लोग तो खाते भी रहते बहुत तीखा है बहुत तीखा है, बोलते हुए खा जाते। एक आदमी को किसी ने दिया वो कोई नमकीन का पैकेट था, कुछ था ऐसा, बोले इसको जरा पढ़ना क्या लिखा है इसमें, तो पैकेट में पढ़ते बोलते अभक्ष्य है, पैकेट खोला और खा रहे बोलते अभक्ष्य है, अभक्ष्य है करके पैकेट खाली कर दिया, मतलब तुम्हारे लिए अभक्ष्य हमारे लिए भक्ष्य है, ऐसा होता है क्या। तो ये तो स्वप्न सच्चा है स्वप्न काल में, और स्वप्न झूठा है जागृत काल में। जगत सच्चा है व्यावहारिक काल में, जगत झूठा है पारमार्थिक काल में, बस इतना याद रखिए। जगत को जब जब झूठा बताया जाता है तब तब स्वप्न का ही दृष्टांत दिया जाता है। और स्वप्न का मतलब क्या होता है, स्वप्न किसको बोलते हैं, नहीं जो नहीं है, जब रात में देख रहे तब नहीं था। स्वप्न का मतलब होता है विषय हो लेकिन इंद्रियों के साथ संपर्क न हो, इसलिए जागृत काल में भी स्वप्न हो सकता है, सोते समय तो सपना होता ही है, जागृत काल में भी लोग बोलते हैं कि जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया, मतलब जो अभी तक नहीं हुआ था अब हो गया। अथवा आप बैठे बैठे कभी किसी चीज को याद करते हो तो लोग बोलते क्या बात है सपना देख रहे हो क्या, क्योंकि है तो जागृत अवस्था लेकिन उस वस्तु का संपर्क नहीं है, इसलिए स्वप्न की तरह ही है। तो जागृत काल में जो चीज हमें सत्य प्रतीत हो भी रही है वो अभी आत्मज्ञान न होने के कारण, आदौ अन्ते चयन नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा, जो आदि में नहीं है अंत में नहीं है इसलिए मध्य में यदि है भी दिख भी रहा है तो वो भी ना के समान ही है, नहीं ही है। ये बार बार जो मनन करते हैं तब जाकर के असंभावना की निवृत्ति होती है। तो संभावना संशय भावना और असम भावना दो हो गए, तीसरा क्या है? विपरीत भावना। एवं श्रवणे मनने च कृते अपि, श्रवण भी कर लिया, सुन भी लिया और युक्ति का भी प्रयोग कर लिया, लेकिन अनादि अविद्या वासनया। लोग बोलते हैं ना, ये वासना कब से है, तो कहा अनादि है ये अविद्या वासनया, अविद्या की जो ये वासना है। सर्वस्य अपि जगतो यथा पूर्वम, सबको ये जगत कैसा दिखाई दे रहा है, सत्यत्व प्रतीति ही, जो सर्वथा असत्य है फिर भी लग कैसा रहा है सत्य, इसी को बोलते हैं विपरीत भावना, उल्टी भावना हो गई, जो असत्य है और लग रहा है सत्य, उल्टा ही तो हुआ। इस विपरीत भावना की निवृत्ति कब होगी? तो सा ब्रह्मैकाकार प्रत्यय प्रवाह रूप निदिध्यासनेन नश्यति। विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वैत वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निदिध्यासनम्। निदिध्यासन का लक्षण किया, विजातीय देहादि प्रत्यय रहित, आत्मा से भिन्न जो अनात्मा है, आत्मा के जाति के नहीं है ना, आत्मा से विपरीत जाति के हो गए, तो ये क्या हो गए? विजातीय देहादि प्रत्यय, देह आदि में जो आत्मा का प्रत्यय प्रतीति हो रही, जो आत्मा नहीं है, आत्मा से विपरीत है, विपरीत जाति के है, तो ऐसे विजातीय प्रत्यय को हटाओ और सब के अंदर आत्मा है इस रूप तरह से सजातीय आत्मा के प्रत्यय का प्रवाह चले लगातार, सब में क्या है? आत्मा है। सब में क्या है? आत्मा है, लेकिन शरीर क्या है? आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है, नहीं है का जो प्रत्यय है, और जो आत्मा है इस प्रत्यय को बनाए रखना, अर्थात विजातीय वृत्ति का तिरस्कार करो और सजातीय वृत्ति का प्रवाह बनाओ, ये सबसे आसान तरीका है, सरल भाषा भी है। विजातीय वृत्ति का तिरस्कार और सजातीय वृत्ति का प्रवाह। सबको ये शंका होती रहती है वृत्ति क्या स्वरूप क्या है। एक बात कहना बाकी रह गया था वो दिन, चार चरणों में चलने वाली वाणी, एक किसी महापुरुष ने कहा और हम लोग भी विचार यदि करेंगे इस पर तो समझ में आएगा। कोई व्यक्ति कुछ हमसे बोलता है और उस समय जो हमारे मन में वृत्ति बनती है, उस वृत्ति को समाप्त करना हो यदि, तो क्या तरीका हो सकता है? किसी ने हमारे मन में बोल करके सुना करके कोई वृत्ति बनाई जो हमारे काम की नहीं है, उस वृत्ति से मानो विक्षेप हो रहा है, उस वृत्ति से अनात्मा की वृत्ति बढ़ रही है, आत्मा की वृत्ति का जो प्रवाह था वो खंडित होने लगा और विजातीय अनात्मा की जो वृत्ति है वो प्रवाहित होने लगा, तो लगेगा अरे ये क्या हुआ? किसी को देख के नहीं आता, जैसे आप सत्संगी हो, राम 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 राम, ये बात क्यों आगे मन में है, भगवान क्षमा करना, ये भावना कभी ना आवे। हाँ, पश्चाताप होता है क्योंकि आपकी भावना शुद्ध है, आप चाहते नहीं इसी व्यक्ति को याद करें, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वो आ जाता है और जब भी आता है तो चित्त विक्षिप्त होता है और चित्त चाहिए शांत, आराम से बैठे। तो ऐसे वृत्ति, जो वृत्ति विक्षिप्त करे, जो वृत्ति आत्म प्रत्यय प्रवाह को खंडित करे, जो वृत्ति शांति से न रहने दे, चाह ही नहीं रहे कि हमारे अंदर वो आवे, फिर भी वो आ रही है। लोग क्या कहते हैं कि जब इसने हमको गाली दी, अब उदाहरण दे रहे हैं कि गाली रूपी शब्द आपने सुना, ये गाली है शब्द गुणकम आकाशम, शब्द कहां रहते हैं? आकाश में। जो उसके मुंह से आवाज निकली, शब्द निकला, वो आकाश में गया कि आपके कान में आया? आकाश में तो जाएगा ही जाएगा, कान में आने देना नहीं आने देना ये अपने ऊपर निर्भर करता है। इसी कान में सत्संग के माध्यम से परमात्मा की वांग्मयी मूर्ति को भी हम उतार रहे हैं और इसी कान से संसार के प्रपंच की बात अथवा किसी की कटु वाणी, इसके लिए भी वही रास्ता है मन में आने के लिए। जिस मन में वांग्मयी मूर्ति परमात्मा की लानी है उसी मन में उसी रास्ते से अनात्मा की मूर्ति अर्थात संसार के प्रपंच की बातें भी तो आती है। अब आप कहेंगे कान का स्वभाव है सुनना, ठीक है ये भी हम मानते हैं, तो सुनाई देगा ही, लेकिन मन में रखना और नहीं रखना ये अपने हाथ में है कि नहीं, ये तो हम कर सकते हैं ना थोड़ा। बोले मन का स्वभाव है, ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है, मन में आ ही जाता है, तो मन को ऐसा तैयार करो, इतना मजबूत कर लो कि उन बातों का असर ना होवे। जैसे हम किसी मामले में अपने चित्त को पत्थर बना लेते हैं, उस बात का जैसे हमें असर नहीं होता, उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में कोई भावना ही नहीं बनती कि इसके लिए कुछ करें, तो फिर बुरी बातों को लाने के लिए हम मन को पत्थर क्यों नहीं बना लेते कि हम आने नहीं देंगे इसको। कान से जो शब्द सुनाई दिया उसको मन में लेना और नहीं लेना, यही हमारा पुरुषार्थ है। ये हम सब कर सकते हैं। तो एक होता है टेंशन लेना और एक होता है टेंशन करना। समझ में आ गया? भगवान शंकर के जो गण हैं नंदी और भृंगी, नंदी भृंगी नृत्य करत है, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव के गासी। भगवान शंकर के भक्त हैं, सेवक हैं, शिव जी के गुणगान करते हैं। नंदी को भगवान शंकर के पास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है ना, कोई टेंशन नहीं है, प्रसन्न है, खुश हैं हमारे भोले बाबा। हम लोगों को टेंशन होता है घर में, कभी बनियान भी उल्टी पहन लेता है कोई, क्या है उल्टी बनियान पहना है, तो वो बोलता है मैंने पहना है, आपको क्या परेशानी हो रही है, जैसा है रहने दो ना। तो ये है हम लोगों के फालतू का टेंशन। शंकर जी के पास क्या है, कपालम चेति यत्तव वरद तंत्रोपकरणम, ये सब उनके उपकरण है, साधन है। तो भृंगी सोचते हैं कि शंकर जी ने ये सब क्यों रखा है, तो भृंगी टेंशन लेते हैं, टेंशन करते हैं, और नंदी कोई टेंशन नहीं करते, लेते ही नहीं। तो टेंशन होना और टेंशन करना, यदि टेंशन होने की आदत है तो वही व्यक्ति फिर करने भी लगता है, इसलिए टेंशन होने ही मत दो। तो फिर धीरे धीरे ये चित्त अपने आप शांत होगा। और गाली दी और हम सोचेंगे इस गाली का बदला गाली से करें, तो इससे वृत्ति अनेक बनती है, और उस गाली के बदला गाली में न लेकर मन में न आने दें तो वो वृत्ति वहीं समाप्त होने लगती है। तो वृत्ति को समाप्त करने का तरीका है उस बात का जवाब न देना, मन में न लेना, और यदि वृत्ति को नहीं मिटाना है तो ये एक गाली को दो गाली, दो के दस गाली, बढ़ते बढ़ते उसका इतना भयंकर रूप होता है कि लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, और इससे आत्मकल्याण नहीं होने वाला। तो ये जो ब्रह्माकार वृत्ति निरिध्यासन की जो बात है, इतना आसान नहीं है, लेकिन सजातीय वृत्ति का प्रवाह बनाना जरूरी है और विजातीय वृत्ति का तिरस्कार करना भी जरूरी है, तब जाके निरिध्यासन सिद्ध होगा और इससे विपरीत भावना भी फिर निवृत्त होती है। और भी बातें फिर कल करेंगे। हरिओम।